नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। वहीं राज्यसभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराने तथा उचित सावधानी बरतने को कहा था।
इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस।
भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में है। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने सूचित किया कि दोहा में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे लगभग 1,000 भारतीय पिछले 3 दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से रवाना हो चुके हैं। दूतावास ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और कोच्ची के लिए कतर एयरवेज की 3 उड़ानें संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री केरल के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को संबोधित भी करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से आहार मेला 2026 का आयोजन हो रहा है। 14 मार्च तक चलने वाला इस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और हॉस्पिटैलिटी मेले में भारत सहित 17 देशों की कंपनियां भाग ले रही हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से ना छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो पाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह सिंधु और डॉ. विवेक जोशी के साथ कोलकाता में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। असम में सत्तारूढ़ NDA गठबंधन के 3 उम्मीदवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। ये 3 उम्मीदवार भाजपा की जोगेन मोहन, तेराश गोवाला तथा यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के प्रमोद बोरो हैं। पश्चिम बंगाल की राज्यसभा के 5 उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नेपाल संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP को प्रत्यक्ष मतदान के तहत 125 सीटें और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 40 लाख से अधिक वोट मिले हैं, जबकि नेपाल कांग्रेस NC को 18 सीटें मिली हैं। इसके अलावा CPN UML ने 9 सीटें, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 और श्रम संस्कृति पार्टी SSP ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP और एक निर्दलीय उम्मीदवार को 1-1 सीट मिली है। T20 विश्व कप से बाहर होने के बाद भारत में फंसी वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज एक साझा चार्टर विमान से जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगी। जोहान्सबर्ग से वेस्टइंडीज की टीम आगे एंटीगुआ जाएंगी। पश्चिम बंगाल ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और उत्तरी कोंकण में भी लू चलने की संभावना है। विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।